الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 سے 34 تک کریں گے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سورہ ابراہیم آپ نے شروع کی اس کے اندر آپ نے شروع کے اندر قرآن پاک کا مقصد تنزیل دیکھا پھر اس کے بعد آپ نے 5 سے 17 آیات کے اندر ایام اللہ کا دیکھا کہ جو سابقہ امتیں تھیں ان کی باتیں بتائی گئیں کہ ان کے ذریعے تذکیر کی گئی یا دہانی کرائی گئی شکر اور کفر کے رویوں کی جو کشمکش رہی ہے نا وہ بتائی گئی کہ سارے انبیاء جو تھے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا لیکن ان کے پیغام کے نتیجے میں لوگوں نے دو طرح کے رویے اختیار کیے تو ان رویوں کی تاریخ بیان کی گئی اور خصوصیت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اب یہاں پہ 18 سے 34 تک آپ دیکھیں گے عقیدے اور عمل کی حیثیت کیا ہوتی ہے کس کے عقیدے اور عمل کی کیا حیثیت ہے یعنی مومن کی کیا ہے اور کافر کی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھنے میں شاید آپ کو ایسا لگتا ہو کہ ان کے بھی بڑے چیریٹی ورک ہیں ان کی بھی بڑی نیکیاں ہیں وہ بھی بڑا سچ بولتے ہیں وہ بھی بڑے آنیسٹ ہیں بڑے اس طرح سے اچھائی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن ہمیشہ دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال کی کیا مثال ہے اور ان کے اعمال کیا حیثیت رکھتے ہیں اور مومن کے عمل کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ان دونوں کی مثالوں کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد آپ 35 سے 41 تک دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ان کی دعوت کا ذکر کیا گیا ان کے کردار کا ان کی دعائیں آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور یہ سارا اس طرح سے آپ اس کے بعد 42 سے آخر تک آپ قیامت کے مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے تاکہ لوگ عذابوں سے ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے لیے کوئی انتظام کریں اپنی آخرت کے لیے تو یہ ایک پوری صورت کا سمجھ لیں ایک آپ کو اوور ویو میں نے دیا ہے تو آج کی آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدے اور عمل کی کس کے عقیدے اور عمل کی کیا حیثیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کس سے کفر کیا کس کا انکار کیا بربہم اپنے رب کا کتنی بڑی بات ہے انکار کس کا کیا ایسے نہیں کہ کسی دنیا کی کوئی اور چیز کا کسی فلسفے کا انکار کر دیا کسی آئیڈیالوجی کا انکار کر دیا کسی نے کوئی تھیوری دی تو کوئی کہہ سکتا ہے بھائی میں نہیں مانتا لیکن رب کو نہ ماننا یہ کوئی تھیری نہیں ہے اور یہ کوئی خاص دین مذہب والے نہیں کہہ رہے یہ تو تمہارا مالک ہے تمہارا خالق ہے وہ جو تمہارا رازق ہے جو تمہارا پالنہار ہے اس کا انکار کر دیا اسی کو نہیں مانا جس نے پیدا کیا تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ مسلمان ہیں جو اس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں یا اس چیز کی دعوت دیتے ہیں بلکہ یہ تو انسان کی فطرت کے اندر ہونا چاہیے یہ تو انسان کی فطرت پکارتی ہے کہ وہ جو مالک ہے اور جو خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو لیکن وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اس کو مانتے ہی نہیں اب ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے اعمال سے مطلب یہاں پہ کیا ان کی نیکیاں جو بھی وہ چیریٹی ورک کریں یا اس زمانے کے اندر کفار مکہ جو تھے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور کعبہ کی देखभाल करते थे, उसके मुतवल्ली थे, तो उनके अमाल जो कुफार हैं, चाहे वो उस जमाने के हों, आज के हों, कयामत तक के, जिसने अपने रब का इनकार कर दिया, उसके अमाल कयामत के दिन क्या वैल्यू रखेंगे, ये बताया जा रहा है। तो देखते हैं, अब आपके और मेरे नजदीक हो सकता है, हम सोचें बड़े बड़े अस्पताल बना दिए इन्होंने, ये देखो कितने बड़े इंसानियत के खिदमत के काम कर रहे हैं, देखो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देखो नेकी का काम है ये है जो ये करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक क्या रमाद, राख की तरह उनकी नेकियां, राख की तरह, राख भी कभी किसी के काम आती है, किसी के काम की नहीं होती, और राख कितनी वेटलेस होती है, बिल्कुल उसका कोई वजन नहीं होता, आप हाथों में लें तो उस बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको, चाहे मुठियां भर भर के ले लें, एशेस जो हैं, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, यानी इनके आमाल बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है उनकी। दूसरी बात, अब क्या है कयामत के दिन क्या होगा इनके आमाल का, अव्वल तो इनके आमाल बिल्कुल ही बेवजन है, मगर इश्तद्दत भी रिया, सख्त हो गई साथ इसके आंधी, फी यौमिन आसिफ, एक ऐसे दिन में जो सख्त तेज हवा का दिन, यानी एक ऐसे दिन में इनके ऊपर, इस राख के ऊपर आंधी चली, तेज हवा चली, जो बड़ी सख्त हवा का दिन था, उस दिन इनके ऊपर तेज आंधी चली, यानी कयामत के दिन जब इनके आमाल के ऊपर तेज आंधी चलेगी, तो उड़ के जब राख के ऊपर तेज आंधी चले तो उसका क्या हाल होता है, उड़ के बिखर जाती है वो, तो कहीं पता ही नहीं चलती कि कहीं है, तेज हवा उसको कैसे उड़ा के बिखेर देती है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसी तरह कयामत के दिन जब उस दिन की आंधियां चलेंगी, वो बड़ा ही सख्त दिन है, बड़ा ही मुश्किल दिन है, उस दिन फिर इनके आमाल की कोई वैल्यू नहीं होगी, जिनको ये नेकियां समझते थे इनका कोई फायदा इनको नहीं होगा। और क्यों हो फायदा, अब हम सोचते नहीं लेकिन उन्होंने तो बड़े अच्छे अमल किए, क्या ईमान लाना इतनी बड़ी बात है, देखें हमें ये समझना चाहिए कि हम बहुत वकालत करते हैं इनके अमाल की, हमें ज्यादा फिक्र है अपने अमाल से ज्यादा ना, हमें इनके अमाल की फिक्र होती है कि इनके अमाल किसी तरह कबूल हो जाए। हालांकि आप देखें, आप मिसाल से एक से समझें, एक बंदा एक कंपनी में काम करता है, वो वहां से सैलरी लेगा, या फिर वो जब सैलरी लेने का टाइम आए वो दूसरी जगह चला जाए, दूसरी किसी कंपनी में जाके कहे आप मुझे सैलरी दें, वो कहे हम आपको क्यों सैलरी दे भाई, आपने काम वहां किया, उनके लिए किया, आप उनसे जाके मांगे। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, उसको मानते ही नहीं, तो कयामत के दिन जजा किसने देनी है, उन बुतों ने तो नहीं देनी, या उन शरीकों ने तो नहीं देनी जिनको उन्होंने अल्लाह का शरीक बनाया हुआ था दुनिया में, तो फिर क्यों अल्लाह ताला इनको नवाजे, इन्होंने तो अल्लाह के लिए किया ही नहीं, क्यों वो अजर दे, जिनके लिए किया जाओ उनसे जाके सिला लो, उस दिन थोड़ी को नजर आएंगे कहीं। तो इसलिए ये बात को समझें कि जब किसी ने अल्लाह के लिए किया ही नहीं है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, याद रखिए ये बात, अगर किसी ने अल्लाह के लिए काम नहीं किया तो ख्वाह वो मुसलमान हो, उसको भी नहीं अजर मिलना, काफिर को कहां से मिल जाएगा, वो तो मानता ही नहीं, उसने करना क्यों है अल्लाह के लिए, वो तो अल्लाह ताला को मानता ही नहीं, सिरा से ही इनकार करता है, मगर जिसने मान के भी उसके लिए ना किया उसको भी नहीं कुछ मिलना, यानी जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की नीयत के साथ, मिसाल के तौर पे दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, या किसी भी नीयत से कोई नेकी का काम करता है, मैं टैक्स बचा लूं, या मैं कुछ और इस तरह से और फायदे हासिल कर लूं, उसके लिए मैं अस्पताल बना लूं, हाजी कहलाने के लिए मैं हज पे चला जाऊं, लोग मुझे हाजी कहेंगे, मुझे मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, लोग हमें नेक समझेंगे, या डोनेशंस दूं इसलिए क्योंकि लोगों को भी पता चले कि हम कितना देते हैं, देखो हम ऐसे नहीं है कि वो कुछ हमें इस तरह समझे, देखो हम इस मामले में भी हैं। अगर इस किस्म की नीयतें रख के कोई मुसलमान भी काम करता है तो उसको भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं है कि हमारे दिल में कहीं ये बात आ जाए कि आए बेचारे उनको क्यों नहीं मिल रहा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, इब्ने जुदआन जो था बड़ा ही सखी आदमी था, बड़ा ही सखी आदमी था। जाहिलियत के अंदर ये सिला रहमी करता था, गरीबों मिस्किनों को इतना खाना खिलाता था। तो फरमाती हैं क्या ये अमाल उसके काम आएंगे, उसको नफा देंगे? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई भी ये चीज इसको काम नहीं देगी, क्योंकि उसने कभी नहीं कहा था ए रब जजा के दिन मेरी खताएं माफ कर देना। उसने किया ही नहीं था कयामत के दिन के लिए, क्यों अल्लाह उसको रिवॉर्ड दे कयामत के दिन? हाँ, जो दुनिया में उनको मिल गया वो शोहरत हो गई कि बड़ा नेक है, शोहरत हो गई देखो बड़ा सखी है, शोहरत हो गई कि बड़ा देने वाला है, बड़ा ख्याल करता है लोगों का, तो बस फिर मिल गया। तो इसलिए इस गलतफहमी से निकल आए कि वो उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है। अगर मैंने और आपने भी रयाकारी के लिए कोई काम किया, हमारा भी काम जाया, वो भी इसी तरह राख बना के उड़ा दिया जाएगा। तो हम इतने कॉन्फिडेंट ना हो कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे तो सारे कबूल होंगे, उनके तो नहीं कोई कबूल हो। हमने भी अगर नहीं अल्लाह के लिए किया, हमारे भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। तो देखिए आप उसमें आता ना, हल अता का हदीस लगाशिया वजूह यौमा इदिन खाशिया, कुछ चेहरे तो उस दिन डरे हुए होंगे, आमिला तो नासिबा, मेहनतें कर कर के थके हुए होंगे, लेकिन उनका अंजाम क्या होगा? तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। देखिए किस तरह वो आग में डाले जाएंगे, किस तरह वो खौलता हुआ पानी पिलाए जाएंगे। हालांकि मेहनतें तो उन्होंने बहुत की हैं, थके तो बहुत हैं, थक चुके, उनके चेहरे पे थकावट के आसार नुमाया, इसलिए कि बड़ी मेहनत करते थे दुनिया में, लेकिन वो मेहनत कोई काम ना आएगी उससे। सूरह नूर में आप देखें शराब से तशबीह दी गई है इनके आमाल को, ऐसे तमाम आमाल जो अल्लाह के लिए ना किए जाए। चटियल मैदान में जैसे चमकती हुई रेत होती है ना, दूर से पानी नजर आती है, मगर करीब जाए तो वो कोई पानी नहीं होती। इसी तरह बड़े बड़े आमाल नेकियों के नजर आ रहे हैं कि वाह भाई क्या शानदार आमाल है, बाप क्या बड़ी नेकियां हैं जो ये करता है, फलां को देखो। मगर जब कयामत का करीब आएगा, मौत का वक्त आएगा, तो पता चलेगा तो शराब था, ये तो पानी नजर आता, पानी थोड़ी है। सूरह फुरकान में हबा मंसूरा कहा गया इसको, जैसे गर्दो गुबार उड़ा दी जाती, इस तरह उड़ा दिए जाएंगे। और इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अमाल अल्लाह ताला कयामत के दिन हवा मंसूरा कर देगा, गर्दो गुबार की तरह उड़ा देगा। तो ये कौन लोग हैं? सहाबा को बड़ी फिक्र हुई कि, और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो ऐसे लोग होंगे कि जिनके अमाल इतने बड़े बड़े होंगे जैसे तहामा के पहाड़, तहामा के पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ थे, लेकिन अल्लाह ताला हबा मंसूरा बना देगा। तो बस सहाबा को बड़ी फिक्र हुई कि कहीं हम तो ना उसके अंदर शामिल हो जाए। तो या रसूल वो कौन से लोग हैं, उनकी कोई निशानी बताएं? आप ससुर ने फरमाया वो तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, तुम्हारे जैसे अमल करने वाले, मगर तन्हाइयों में होते तो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते। यानी जब तो हम सारे देख रहे हैं तब तो ठीक है, जब घर के अंदर है, हमारे घरों की एक्टिविटीज क्या है, उनमें कोई खुदा खौफी नहीं, उनमें कोई जुबान की हिफाजत नहीं, उसमें कोई दिलों के ख्यालों की हिफाजत नहीं, उसमें कोई नेकी के अमल की जरूरत नहीं हम महसूस करते हैं। घर आना अभी कौन सा कोई देख रहा है, बाहर जाएंगे तो वो हम एक जहाँ पे अबाया पहनेंगे वहां पे एक दीन का भी लबादा ओढ़ के और बाहर ऐसे जाएंगे, हम बहुत दीनदार हैं, बहुत खौफे खुदा है हमारे अंदर, घरों के अंदर कोई खौफे खुदा ही नहीं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अमाल की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, रियाकारी से और तकब्बुर से बचाए। ला यकदिरूना मिम्मा कसबू आला शही, वो नहीं कुदरत रखते होंगे इसमें से जो उन्होंने कमाई की, किसी चीज की भी कमाई तो उन्होंने भी की है, दूसरों ने भी की है, लेकिन आप उनके हाथ में ही नहीं है, उनकी कुदरत में ही नहीं है, उनकी रीच में ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? ये जो रमाद है, ये जो उड़ी जा रही है, ये जो राख है, इसको किधर से पकड़ पकड़ के लाएंगे और इसकी क्या वैल्यू है? लिहाजा देखना चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम एक तो अपनी नियतों को खालिस करें कि हमारी नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, और नंबर टू हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक हो, तभी ये कबूल होगा। जो बिदतें हैं वो कबूल नहीं होंगी, नए नए काम बना बना के और उनको नेकियों के खुद ही टैग लगा के और खुद ही सोच लेना ये बड़ा नेकी का काम। तो इसलिए हमें हर काम अल्लाह ताला को राजी करने, अल्लाह तू खुश हो जा, अल्लाह ताला तू इसे राजी हो जा। बेशक अपने आप के अंदर ये बात दोहराएं भी, ताकि हमारी एक जो नीयत है ना फर्म हो जाए, यानी पक्की हो जाए। अपने आप को सुनाएं, या अकेले हो अपने आप से कहें कि अल्लाह, या अल्लाह ताला से बात करें, या अल्लाह ताला मैं तेरे लिए कर रही हूं, तू इससे खुश हो जाना। कि बार बार कहने से भी वो चीज पक्की होती है अंदर। और इस चीज को छोड़ दें हम कि मेरी वाह-वाह कितनी होगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग कितना अच्छा समझेंगे, ना किसी की तारीफ की परवाह करें और ना ही किसी की तनकीद की परवाह करें। तो ज़ालिका हुवा दलालुल बईद, ये तो दूर की गुमराही है, दूर की गुमराही है। यानी गुम हो गई उनसे वो राख, तो पता नहीं किधर ही चली गई, उड़ गई, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी, वो थोड़ी वापस ला सकते हैं। अलम तरान अल्लाह खलक समावाती वल अर्द बिल हक, क्या नहीं तुमने देखा कि अल्लाह ताला ने पैदा किया आसमानों और जमीन को हक के साथ। हक क्या होता है? बामकसद और सच्चाई पे मबनी, जो चीज जिस चीज के मकसद के लिए बनाई गई है वो अपना मकसद पूरा कर रही है। अब इससे कि हमें क्या समझाया जा रहा है? हर चीज मतलब बता दी गई कि जो आसमान है और जमीन है, इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात हैं, इनको भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही बेवजह नहीं पैदा कर दिया, एक मकसद से पैदा किया। इस तरह इस कारखाना कुदरत में, इस कायनात में हर चीज हक के साथ पैदा की, यानी बा मकसद। एक्चुअली हमें एक चीज को तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि हर चीज तो अपना मकसद पूरा कर रही है। इंसान, क्या तू अपना मकसद पूरा कर रहा है? जाहिर है तुझे भी ऐसे ही तो नहीं बना दिया होगा, कोई खेल तमाशा नहीं है ऐसे ही कि तुम्हें बना के छोड़ दिया जाए। तुम्हें भी तो किसी मकसद के लिए बनाया गया होगा। बताओ तुम अपना मकसद पूरा कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो क्या होगा? यशा युधिबकुम, अगर वो चाहे तो फिर ले जाए तुम सबको। वयाती भी खल्कन जदीद, और ले आए नई मखलूक। आपके घर में कोई चीज अपना मकसद ना पूरा करे, कोई मशीन आपने लिए वो काम ही नहीं करती, उसका काम है चॉप करना, वो चल ही नहीं रही, वो चॉप ही नहीं करती, तो क्या करते हैं? संभाल के रख लेते हैं, सजा लेते हैं उसको? नहीं, उसको गार्बेज करते हैं। अगर इंसान, तू अपना मकसद नहीं पूरा करता, हर चीज तो अपना मकसद पूरा करे। अगर अल्लाह चाहे तुझे ले जाए और एक नई मखलूक ले आए, और मदारे का अल्लाह ही भी आजीज, और ये अल्लाह पे कोई मुश्किल नहीं है। ये ना समझना कि अल्लाह ताला कैसे करेगा, इतने इंसान है कैसे इनको ले जाएगा। अल्लाह ताला ने एक वक्त पहले भी ऐसा किया था, नूह अलैहि सलाम के जमाने के अंदर जमीन पे वाइप आउट हो गई थी इंसानियत, और दोबारा फिर शुरू हुई थी। इसीलिए नूह अलैहि सलाम को आदमे सानी कहा जाता है, कोई भी जिंदा नहीं रह गए थे इंसान। तो ये अल्लाह ताला पर मुश्किल नहीं है, सबको ले जाए। आपने देखा कौमों के ऊपर एक एक चीख आई और चीख सही उंदे मुंह गिर पड़े। इंसान की हैसियत क्या है? इसको ले जाना कौन सा मुश्किल है? लिहाजा असल चीज है, अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत करे, उसकी मोहब्बत में डूबे, और उसके हर हुक्म के आगे सर झुका दे। तुम नहीं करते, तुम नहीं उसको मानते, वो चाहे तो ये भी कर सकता है कि तुम लोगों को ले जाए। और ये कोई जुल्म नहीं होगा, इसलिए कि जिसने पैदा किया उसने कोई चीज आपसे रिक्वायर की थी, कोई चीज आपसे तकाजा की थी, नहीं पूरी की तो उसकी कोई जरूरत नहीं आपकी। वो चीजें जो हम अपने लिए सही समझते हैं ना, हम नाकारा चीज को उठा के फेंक देते हैं, अल्लाह ना उठा के हमें फेंक दे। अगर हम नाकारा हो गए उसके कारखाना है कुदरत में, हम अपना काम ही नहीं कर रहे। और आज आधी से ज्यादा इंसानियत को तो यही नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों आए इस जमीन पे, हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, जानते ही नहीं। इवन मुसलमान भी नहीं जानते दूसरों को क्या कहना। हाँ, हमें किसी पर्पस से पैदा भी किया गया, या ऐसे ही बस खाने पीने और मजे करने आए हैं, एंटरटेनमेंट, खाना पीना सोना बस, और मजा करना और अपनी मर्जियां करना, इसके लिए हम आए हैं? यही नहीं समझते सब। ये बड़ी डरा देने वाली बात है कि अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें ले जाए। और पहले भी, इससे पहले भी इस सूरत में आया है ना, अल्लाह ताला चाहे तो, अगर तुम उसके दीन से फिरते हो, सूरह माईदा में अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें ले जाए और कोई और लोगों को ले आए जो उससे मोहब्बत रखते हैं और वो उनसे मोहब्बत रखता है, किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं जो डरते हैं। अल्लाह अकबर। और ये अल्लाह ताला के कोई मुश्किल नहीं है। वबरजू लिल्लाह जमीआ, और एक दिन वो आने वाला है कि जिस दिन सब के सब बेनकाब होंगे, नंगे होंगे, नॉट ओनली फिजिकली, बिल्कुल हर चीज अल्लाह के साथ। एक तो वो बिल्कुल चटियल मैदान होगा, शाम की सरजमीन हदीस में आता है कि वो हशर का मैदान बनेगी, और वहां पर सब बेखतना, बेहिजाब, बेलिबास ऐसे ही खड़े होंगे जैसे जब पैदा हुए तो नंगे आते हैं दुनिया में, इस तरह से होंगे। और फिजिकली तो ऐसे होंगे, इंटरनली भी जो इंसान के अंदर की भी चीजें हैं ना वो भी बाहर होंगी, यानी अंदर के ख्यालात, अंदर के अकीदे, अंदर की बातें, वो भी सब जाहिर होंगी अल्लाह ताला के आगे। और जमीआ सब के सब, ये जो बड़े बड़े अमीर हैं, सदर हैं, बादशाह हैं, वजीर हैं, सफीर हैं, सब अल्लाह ताला के सामने बेबस खड़े होंगे। जहाँ कभी देखते हैं ना, मैंने देखा कि बहुत बड़े एक आलिम ना, बहुत बड़े आलिम, तो वो इस तरह अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाए हुए और रो रहे हैं, रो रहे। अच्छा, देख के मुझे हुआ, देखो इतने बड़े आलिम हैं और इतने नेक और इतने साले हैं, इनको भी अल्लाह ताला की उसी तरह जरूरत है जैसे मुझ निकम्मी को, जैसे हम जैसे गुनाहगारों को जरूरत है, ऐसे ही उनको भी जरूरत है। ऐसे ही वो भी अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, कितना भी इंसान नेक हो जाए, कितना भी इंसान साले हो जाए, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, वो भी अल्लाह के आगे फकीर है, वो भी अल्लाह के आगे हाथ उठाए हुए हैं, वो भी अल्लाह के आगे उसी तरह रोते हैं, वो भी अल्लाह ताला से डरते हैं। अल्लाह अकबर, कि उसके आगे तो सभी फकीर हैं, तो सब ही उसके आगे सफ बांधे हुए खड़े होंगे, महमूद या सब फकीर होंगे उसकी बारगाह में। और ये देखें कि दुनियावी हैसियतें खत्म हो जाएंगी, जैसे हज वगैरह में भी दुनिया की हैसियत खत्म हो जाती है ना एक ही लिबास में, मगर वहां पे कम से कम लिबास तो होता है, मगर इस जगह पे तो कोई लिबास नहीं, तो सब जाहिर हो जाएगा। बारजू का मतलब है कि कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ जाहिर हो जाएगा, चाहे वो अमल है तो चाहे वो कुछ भी है। फकाल दुआफा लिल्लदीन इस्तकबरू, कहेंगे कमजोर किन से, जिन्होंने तकबर किया। कमजोर कौन लोग, कमजोर ये वो लोग हैं जो माली हैसियत से कमजोर थे, स्टेटस में कमजोर थे, माशरे में समझे जाते हैं ना कि कुछ लोग कमजोर समझे जाते हैं, वो लोग उनसे कहेंगे जो बड़े अमीर कबीर या बड़े स्टेटस वाले वजीर वगैरह थे, जिनके पीछे ये दुनिया में चला करते थे। आप देखें इस दुनिया में हम लोग किसी ना किसी को जरूर फॉलो कर रहे होते, चाहे वो अल्लाह रसूल की बात है या कोई सेलिब्रिटी की बात है, कोई कोई एक्टर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई जिनको कहते हैं फिल्मी सितारे हैं, कोई मॉडल है, कोई फलां है, बस अंधाधुंध उनके ऊपर चल रहे हैं, उनके जो वो पहनते हैं, जैसे वो चलते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जैसा वो हेयर कट कराते हैं, जिस तरह से उनका रहन सहन है, जैसे उनको बस लाइन फॉलोइंग कर रहे होते हैं। तो हमेशा कुछ कोई ना कोई सोसाइटी में ट्रेंड सेटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, या जिनके तरफ लोग देखते हैं, इसने क्या पहना, इसने कौन सा ब्रांड पहना, इसने क्या, बस फिर अंधाधुंध वैसे ही करना चाहते हैं। आज भी है ऐसे। अब क्या है, उस दिन ये जो कमजोर लोग थे ये कहेंगे इन मुतकब्बिरीन को, जो दुनिया में बड़े बने बैठे हुए थे, बड़े थे नहीं, इन्ना कुन्ना लकुम तबा, बेशक हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, हम तो तुम्हारे फॉलोअर थे। आज तो बड़ी फैन फॉलोइंग इस पे भी होती है, ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये कितनी फॉलोइंग होती है, कितना वॉच किया जाता है, ये क्या जिंदगियां गुजार रहे हैं, ये इनके क्या तौर तरीके हैं, उस वैसे ही कॉपी करते हैं। तो वो उस दिन कहेंगे हम तो आपको कॉपी करते थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अदाबिल्लाही मिन शई, तो आज क्या तुम हमें कुछ बचाने वाले हो अल्लाह के अजाब से, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ हमें बचा सकते हो अल्लाह के अजाब से कुछ, क्योंकि पता चल गया ना कि हम तो क्या करके आए हैं और इनके पीछे हम चलते रहे, इन्हीं को हमने बड़ा समझा, तो शायद आज भी ये कहीं इनकी कुछ चल जाए और हमें बचा ले। अल्लाह के अजाब से कुछ भी जरा भी हमें कहीं बचा सकते हो। अल्लाह अकबर। कालू, अब दुनिया में तो वो बड़े थे, लीडर थे, मगर यहां पे उनकी क्या हैसियत है। कहते हैं लव हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती ला हदैना को, हम तुम्हें भी हिदायत दे देते। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो मैंने आपको कहा है कि कोई सेलिब्रिटीज ही हो या ये हो, ये वो लोग भी हो सकते हैं, जैसे कोई पीर फकीर, कोई ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते से गुमराह करने वाले हैं, नई नई चीजें निकालने वाले, बिदात और शिर्क की तरफ लोगों को ले जाने वाले, दीन के इमाम बने हुए हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं। अब दुनिया में तो वो भी बड़े बने हुए, वो भी कहते हैं हमारे इतने मुरीद हैं, हमारे इतने पैरोकार हैं, हमारे इतने जहां जाते हैं उनके मुरीद उनके साथ साथ चल रहे होते हैं, और बड़ी उनकी वाह वाह होती है। मुरीद तो वही कहते हैं जो पीर साहब ने बोलना है या जो उनके इमाम ने बोलना है। अब लेकिन गलत रास्ते पर लेकर गए थे ना, तो वो कहते हैं अगर हमें हिदायत मिलती हम तुम्हें भी दे देते। अब क्या है, अब यहां पे तो क्या हाल है, सवा उन अलैना। अब ये बात देखें कितनी सोचने की है, बराबर है हम पर अजज़ाना, हम जजा फजा करें, या हम सबर ना, या हम सबर कर लें। मौलाना में महीस नहीं है कोई हमारे लिए छुटकारा, कहीं पनागा नहीं है। और अब्दुर्रहमान बिन जैद फरमाते हैं कि ये जब जहन्नुम में चले जाएंगे तब ये लोग ये कहेंगे, ये अब उनको जाकर कहेंगे कि हमें बचाओ ना, अब हमारे लिए कुछ करो, यहाँ पर हम तो दुनिया में तुम्हारे पीछे ही चलते थे, यानी हमने आपको कितना बड़ा अपना लीडर बनाया हुआ था, हमने आपकी कितनी फॉलोइंग की थी, आप जैसे हुक्म देते थे हम वैसे करते थे, हम आपके ताबेदार थे, अब आप प्लीज हमारे लिए कुछ हेल्प करें ना। तो फरमाते हैं कि जहन्नमी लोग कहेंगे देखो ये मुसलमान अल्लाह के सामने रोते धोते थे, इस वजह से ये जन्नत में पहुंच गए, आओ अब हम भी जजा फजा करें, रोएं धोएं गिड़गड़ाएं। तो ये इतना रोएंगे चीखेंगे चिल्लाएंगे, बाज जगह आता है 500 साल तक चीखते चिल्लाते रहेंगे। 500 साल भी हो सकता है एग्जेजुरेशन के लिए हो, कि सदियों तक रोते रहेंगे पीटते रहेंगे, क्योंकि मुसलमान जो थे देखिए वो रातों को रोया करते थे अपने रब के आगे, वो अल्लाह से इतना डरते थे, उनके दिल नरम थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे अपने गुनाहों का सोच के। तो इन्होंने सोचा वो तो रोते थे, भाई रोने की वजह से जन्नत में चले गए, हम भी रोते हम भी पीटते, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अब कहेंगे, अब आपस में सोचेंगे कि जन्नती जन्नत में इस वजह से गए कि इन्होंने बड़ा सबर किया दुनिया में, तो आओ अब हम भी ना बड़े खामोश हो जाते हैं, हम सबर कर लेते हैं, अब इतना सबर करेंगे, इतना सबर करेंगे कि जैसा सबर कभी किसी ने देखा ना। हाँ, बास जगह आता है कि 500 साल तक सबर करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। तब वो कहेंगे सवाउन अलैना जेजेना हम सबर ना, हमारे लिए तो बराबर ही है, चाहे हम रोएं धोएं पीटें या फिर हम सबर करें। इसलिए कि ये सबर याद रखिए दुनिया में करने का फायदा है, आज हमसे एक दिन सबर नहीं होता, हम कहते हैं हाय पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे सबर करूं, एक दिन का सबर मुश्किल हो जाता है, और वहां 500 साल सबर करते रहेंगे आग के अजाब में, ना कुछ बोलेंगे ना कोई फरियाद करेंगे, और जब रोएंगे तो तब भी इतना रोएंगे, आज का एक आंसू हम अपनी आंखों से बहा लें अगर, आंसू बहना तो दूर की बात, अगर आंसू आंख की इतनी सी जगह पर ना, जितना मक्खी का सर होता है ना, इतनी सी जगह पर भी आंख में आके आंख को डुब डुबा दे, इतना सा भी आंसू आ जाए जितना मक्खी का सर है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर भी बख्शिश फरमा देते कि मेरा बंदा मुझसे डर के, मेरे अजाबों से डर के और अपने गुनाहों की वजह से रो पड़ा, इसकी आंखों में आंसू आ गए, इसको इतना एहसास हुआ कि मेरे गुनाह कितने हैं। आज की आहुजारी काम आ सकती है कि अल्लाह के आगे आहुजारियां करें कि अल्लाह मेरे गुनाह कितने हैं। आज का खौफ काम आ सकता है कि अल्लाह मुझे तेरे अजाबों से डर लगता है। हम पहले पढ़ रहे हैं कि खौफ की क्या वैल्यू है, ये तो बड़ी कीमती चीज है, जिसको मिल जाए बड़ी कीमती चीज है, क्योंकि इल्म वाले ही अल्लाह से डरा करते हैं, जो बेइल्म है वो बेखौफ है, उसको कोई डर नहीं, ना पकड़ का डर, ना सजा का डर, ना अल्लाह के आगे खड़े होने का डर। तो इस दुनिया के अंदर जिसको खौफ की नेमत मिल गई ना, वो फिर अल्लाह के आगे रोता भी है, वो फिर रातों को उठता भी है, वो फिर गुनाहों से बचता भी है, वो फिर फूंक फूंक के कदम रखता है, उसको पता है कि वो अजाब कैसे हैं, वो उनसे डरता है, वो अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है जहन्नुम की आग से। और जिसके अंदर खौफ नहीं, जो बेखौफ जिंदगी गुजारता है, फिर वो मनमानियां ही करता है, जाहिर जब डर ही नहीं तो फिर जो मर्जी करो। और खौफ तो बड़ी कीमती चीज है, जिसको मिल जाए, लिहाजा देखो वहां जाके वो सबर भी करने को तैयार हो गए और रोने धोने को भी तैयार हो गए, लेकिन ना सबर काम का और ना रोना धोना यहां क्यों नहीं कर लेते, यहां एक बार का अल्लाह ताला के आगे जी भर के रो लें तो सारी जिंदगी के हो सकता है गुना माफ हो जाए, और वहां 500 साल में भी नहीं माफ होने, इतना रोएंगे जहन्नमी, इतना रोएंगे कि आंसू भी खत्म हो जाएंगे और खून बहने लगेगा आंखों से, फिर भी माफी नहीं है, फिर भी माफी नहीं। हर आज हम कहते हैं सबर करना बड़ा मुश्किल है, तो या तो यहां सबर कर ले, वरना जहन्नुम की आग के ऊपर सबर तो वाकई बड़ा मुश्किल होगा। तो वो कहेंगे, ये जो कमजोर लोग होंगे वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने तो अपने बड़ों की इताअत की, हमने अपने लीडरों की इताअत की, उन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया, ऐ हमारे रब तू उनको अब दोहरा अजाब दे और उनके ऊपर बड़ी लानत कर। तो ये झगड़ेंगे उनसे और उनको बुरा भला कहेंगे, वो इनको बुरा भला करेंगे, ये उनको लानते देंगे, वो उनको लानते भेजेंगे, ये अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह अब इनको ना छोड़ना, इनको तो इतना मिले, अब इतना अजाब हो, लेकिन दुनिया में आंखें खोल के चलने को कोई तैयार ही नहीं, अंधाधुंध चल रहे हैं, जो जो कर रहा है, जो कह रहा है, जिसने YouTube पे आके कुछ कह दिया, जिसने Facebook पे कुछ कह दिया, जिसने यहाँ पे WhatsApp पे कुछ भेज दिया, बस अंधाधुंध लगे हैं, को देखते ही नहीं कि हमने दीन को किसी ऐसे से लेना है जिसको वाकई दलील के साथ जो हमें बता रहा, वाकई जिसको कोई नॉलेज हो, बस ये जो फलां है वो बड़ी अच्छी बातें करता है, जिसकी बात अच्छी लग गई उसके पीछे लग गए, वो क्या हो गया तुम्हें, तुम अपनी आखिरत की जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो, ये बड़े बड़े लोग उन्होंने जाके वहां पे कहना है ना, हमें तो खुद नहीं हिदायत थी, हमें तो खुद नहीं पता था, हम तुम्हें क्या बताते, हमें खुद पता होता तो हम बताते ना, यानी खुद उस दिन मान लेंगे कि हम तो खुद भटके हुए थे, और हम भटके हुए उनके पीछे जो चल पड़े, बताएं वो किधर पहुंचेगा, क्या हम सोचते नहीं कि हमने किनके पीछे चलना है, किनको फॉलो करना है। अंधाधुंध बस उनको फॉलो कर रहे हैं जो दुनिया में नामवर हैं, जिनकी शोहरतें हैं, जिनकी वाह वाह है, हम सोचते हैं पता नहीं इनको फॉलो करने के साथ हमारी भी वाह वाह हो जाएगी। तो ये तो उनका हाल हो गया जो इंसानों में शैतानी किस्म के इंसान थे जिनके पीछे लोग चले, और वो खुद भी जहन्नुम में गए और इनको भी साथ ले गए, खुद तो डूबे, सनम तुझको भी ले डूबेंगे, ये इन्होंने किया। अब आगे शैतान का क्या हाल होता है, वकाल शैतानो, अब शैतान भी जहन्नुम में है, सबसे बड़ा तो वही दुश्मन है, उसने उनको भी गुमराह किया, उनके पीछे और कितने गुमराह हुए। लम्मा खुदी अल अम्र, जब फैसला कर दिया जाएगा काम का, यानी क्या मतलब फैसला कर, यानी जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे, सबके फैसले चुका दिए जाएंगे ना, तब इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं अपनी तफसीर में कि बाकायदा शैतान ना खुतबा देगा जहन्नुम में, और आग का एक मिंबर होगा जिस पे खड़ा होके ये खिताब करेगा, और सब उसको सुनेंगे, उसके खिताब को सब सुन रहे होंगे, तो अल्लाह ताला इसको इजाजत देगा, ये खड़ा होगा और ये सबसे अब एक तकरीर कर रहा है ये, और तकरीर में ये क्या कहता है, सुभान अल्लाह मेरा रब कितना मेहरबान है कि उसने वो बातें जो कयामत के दिन जाके खुलनी है और किसने क्या बोलना है उसको हमें दुनिया में बता दिया, इसकी हकीकत दुनिया में खोल दी। आपको आप में से कोई ऐसा है जो ये समझता है कि शैतान बस एक ऐसे ही चीज है, कि ईवल को नाम शैतान दे दिया गया, वो कोई वजूद ऐसा नहीं है, ये भी एक फलसफा है दुनिया के अंदर, भाई हर चीज को शैतान कहते हैं, बस जो ईवल है वो बस शैतान कह दिया गया, एज सच वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, बिलीव मी वो पर्सनैलिटी है और इसके सबूत भी हैं, और पहले तो वक्तों के अंदर ये था कि ये बिल्कुल सामने वाजे जाहिर होके आ जाता था, अब भी जो लोग इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, इसके बन जाते हैं और इसके लिए बड़े बड़े वो उनसे काम करवाता है ऐसे गंदगी के, मैंने इसे बड़ी रिसर्च की है, मैं आपको बताऊं ये ऐसे उनके सामने आता है और फिर उनके साथ मिलके वो काम करता है, उनको तो तबाह करके ही रह देता है और उनके साथ साथ मिलके और लोगों को भी तबाह करता है, और आज आप देखेंगे शैतानी पूजा भी हो रही है, यानी कोई मेरा तो ख्याल है शायद इंसानियत की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ होगा कि बाकायदा मुंह से बोल के शैतान की, हाँ लोगों ने बुतों की, वो बुत भी होने यही सोचे होते थे ये नेक लोग, मुशरिकीन ने मक्का का वो बुत वो सोचते थे ये नेक लोग थे कि हमें अल्लाह के करीब करेंगे, ये तो इनसे भी गए गुजरे हो गए जिन्होंने बाकायदा शैतान की पूजा शुरू कर दी, यानी इंसानियत इस हद तक गिर गई कि वो जो तुम्हारा दुश्मन है उसकी तुम पूजा शुरू कर दो, उसकी इबादत शुरू कर दो, और कैसे खून और कैसे काला रंग और कैसे वो जो इनकी मजलिसें होती हैं, मैं कहूंगी नहीं आपको कि इनके बारे में मजीद वो करें, मगर हर चीज ऑनलाइन आज पड़ी हुई है, इनकी मजलिसों में क्या होता है, जहां पे ये जो इसकी पूजा करते हैं वो क्या करते हैं, कैसे वहां पे सारे ये अपने रिचुअल्स करते हैं, क्या इनकी थिंकिंग है, कौन कौन से काम ये करते हैं, इंसान का दिमाग जो है ना उलट जाता है सोच के भी और पढ़ के भी कि ये क्या चीजें हैं जहां तक आज इंसानियत पहुंच चुकी है, अरे फिर अपने चुंगल से फिर निकलने भी नहीं देते किसी को, उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये बहुत ही एक और ही दुनिया है जैसे अल्लाह ताला हमें कभी ना वास्ता डाले, मगर इट्स अनदर वर्ल्ड जो इसी जमीन के ऊपर ये सब चल रहा है, और बाकी शयातीन वैसे तो इंसानों को सबको ही गुमराह करते ही हैं, वो तो है ही, वो तो नेकों के पीछे तो ज्यादा पड़ जाते हैं, जो ज्यादा बड़ा नेक इंसान है उसके पीछे बड़ा शैतान पड़ जाता है उसको अपनी तरफ लाने के लिए, लेकिन ये जो शैतानी कारोबार है, शैतानी इबादत का और शैतानी कामों का, ये बाकायदा हो रहा है इसी जमीन के ऊपर, और बहुत ही एक डार्क दुनिया है वो, तो शैतान उस दिन खड़ा हो जाएगा, और मैं कभी सोचती हूँ कभी बिलीव नहीं कर सकती थी कोई इंसान भी ऐसे हो सकते जो ये कहें कि हाँ हम शैतान की पूजा करें या शैतान के पीछे चले, हम तो हमेशा इसी तरह जैसे हमने सुना पढ़ा भाई, शैतान को बुरा ही समझा, बुरा ही उसके लिए रखा, लेकिन जब ये सब आप देखते हैं और क्या क्या वो इन लोगों से कराता है, तो आप वाकई बोल उठेंगे कि या ये तो शैतान वाकई शैतान ही है, जिसको हम शैतान कहते हैं ना, ये वाकई शैतान है, ये जो चीजें, ये जो धंधे करा रहा है वो लोगों से। तो शैतान उस वक्त कहेगा, इन अल्लाह वादकुम, बेशक अल्लाह ताला ने तुम लोगों के साथ वादे किए थे, वादल हक, जो वादे सच्चे थे। अच्छा, वादे किए हैं अल्लाह ताला ने हमारे साथ? कौन से वादे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ किए हैं? आपको कुछ पता है? आप कुरान पढ़ते हैं, कोई वादे आपको कुरान में मिले हैं जो अल्लाह ताला ने आपके साथ किए हैं? हाँ, वो बिल्कुल सच कह रहा है, अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादे किए हैं। और क्या वादे किए हैं अल्लाह ताला ने हमारे साथ? आप कुरान में बाकायदा वादे का लफ्ज भी पढ़ते हैं, बाकायदा वादे का लफ्ज है, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ वादा करता है उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और अगले साले किए, मगफिरत का और अजर अजीम का वादा करता है। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, और अल्लाह ताला वादा करता है कि एक दिन आएगा कयामत का, जिस दिन ईमान वालों को और साले अमल करने वाले को ये मिलेगा, और जो अल्लाह ताला का कुफर करने वाले हैं उनके लिए ये वईदे हैं। ये सब वादे हैं ना अल्लाह ताला के, ये सब जो भी यहाँ पे बताया गया है ये, और ऐसी जन्नतें होंगी जिसमें ये नहरें होंगी, जिसमें ये होगा, ये सब अल्लाह का वादा है। अब ये वादे सच होंगे उस दिन, ये वादे सबके सामने आ जाएंगे उस दिन, और जन्नत हक है और जहन्नुम हक है और अल्लाह की मुलाकात हक है। ये जिन चीजों को आज लोग सोचते हैं, पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं, पता नहीं क्या बनना है, कौन सा किसी ने आके बताया, वो सब अल्लाह के वादे जो उसने पैगंबरों की जुबान पर किए, वो वादे जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जरिए हमें बताए, वो सब सच होंगे, एक एक बात सच हो जाएगी। वह वाद तो कुम, मैंने भी तुम्हारे साथ वादे किए। फअखलफ तो कुम, मैंने खिलाफ किया तुमसे, यानी अब वहां पे जाके मान लेगा कि मैंने तुमसे वादा किया ना, तो मैंने तो नहीं अपना वादा पूरा किया। वादे क्या करता था, हमसे क्या वादे करता है? वो जो ख्यालात जिनको हम सोच रहे थे ना, ये हमारे ख्यालात है, वो असल में हमारे नहीं होते, वो उसके होते। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के दीन पे चलने को मुश्किल बना के दिखाता है, डराता है, इससे फ्यूचर खराब हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, यहाँ उम्मीदें दिलाता है, कोई बात नहीं निजात हो ही जानी है, अल्लाह ताला ने इतनी बातों में थोड़ी पकड़ लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी कर लूं तो, क्या फर्क पड़ेगा, देखो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अल्लाह गफूर रहीम है, वो तो माफी कर देगा, अब मेरी सिफारिश तो हो ही जाएगी, फलां का पल्ला पकड़ के निकल ही जाऊंगी, फलां के साथ मेरी दोस्ती है, मेरी अम्मी भी नेक थी, मेरे अब्बा नेक थे, मेरे फलां नेक है, मैं तो फलां की शागिर्द हूं, या मैं फलां की, बस उस दिन इनका दामन पकड़ना है और मैंने भी चले जाना है, पार हो जाना। ये सब उसके वादे हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कल आता है तो कल कर लेंगे, हाँ ये कर लूं फिर तौबा कर लूंगी, हाँ बस जरा ये मेरे काम हो जाए तब तौबा करूंगी, तब मैं नेक हो जाऊंगी। फजर पर देखे उठना कितना मुश्किल कर देता है, अच्छा अभी तो हाँ टाइम है थोड़ा, फजर का थोड़ा 10 मिनट और आंख लगा, 10 मिनट का अलार्म लगा के फिर सो गए। जो नींद, मैं तो ये कहती हूँ, जो नींद पूरी रात पूरी नहीं हुई, अब 10 मिनट में कैसे पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसका झांसा होता है ना, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट करते करते नमाज का टाइम ही गुजर गया। हिजाब लेने वाली को कहेगा कि तुम कैसी लग रही हो, जरा इसको पीछे कर लो, जरा लूज कर लो, इतना भी क्या हो गया। गफलतें डालता है इंसान को, भुला देता है चीजें, नेकी के काम भुला देता है, उसको तसल्लियां देता है, यू आर ओके, कोई बात नहीं, दुनिया तो ये भी नहीं करती, लोग एक भी नहीं नमाज पढ़ते, कम अज कम मैं तीन तो पढ़ लेती हूँ, देखो दुनिया को आज कैसे कर रहे, चलो मैं मेरा प्रॉपर नहीं है, एक हिजाब तो है ही ना मेरा, मतलब ऐसी ऐसी तसल्लियां देता है, और वो मैं करके आती है, ये नहीं आती कि तुम ऐसे कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरे अंदर से ही ख्यालात उठ रहे हैं, ये कभी आते हैं ख्याल? ये आते हैं ना तो ये शैतान की तरफ से हैं। कहता है कोई जन्नत जहन्नम नहीं, कुछ नहीं होता, बाबर के ऐश कोश आलम दोबारा नहीं। इस तो किसने दोबारा आना है, एक दफा जिंदगी मिलनी है, जियो और अच्छी तरह जियो, दोबारा थोड़ी आना है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, देखा जाएगा जब वो होगा। वो तो सोचे ना कितनी दफा अल्लाह ताला के सामने हाजिरी का ख्याल आता है और कितनी दफा यहां पर दुनिया की फिकरात हमारे दिमाग के परछाई होती है। कितना टाइम उसके लिए हम सोचते हैं जो हमेशा की जिंदगी, और कितना टाइम हम यहां के लिए सोच रहे होते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात ये जहन के अंदर डालता है कि इंसान आखरत से बिल्कुल गाफिल हो जाए, सजा जजा से गाफिल हो जाए और बस यहीं पे गुम हो जाए, यहीं की परेशानियां, यहीं की फिकरात, यहीं के खौफ जहन पे। ऐसे अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, हाय ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना, इस तरह की डालता है कि इंसान जो है ना आखरत को भूल ही जाता है कि वहां के भी कोई अजाब है। और यहीं के इतने सब्ज बाग दिखाता है, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर हम इतना कमा लेंगे, फिर हमारे ऐसे हो जाएगा, फिर हम ये वेकेशन पे जाएंगे, इतनी सोचे हावी कर देता है, जन्नत भूल ही जाती है। अंदर असल में रगों में खून की तरह दौड़ता है ना, तो सोचों पे हावी हो जाता है। अब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तब वो नहीं ठहर सकता, लेकिन अदरवाइज हमले करता रहता है और मरते दम तक पीछे पड़ा रहेगा, छोड़ता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बता दिया, देखो इसके वादों पे ना जाना, ये तुम्हें वादे दिलाएगा, तुम्हें कहेगा कुछ नहीं होता, ये ख्यालात से, नजरों से, समाज से, इन चीजों से ये एंटर हो जाता है, कैच कर लेता है इंसान को। हराम कामों में इंसान पड़ता है तो ये उसको कैच कर लेता है, छोड़ता नहीं है, इंसान को नाशुकरा बनाता है। उसने कहा नहीं था मैं इसके रास्ते में बैठूंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, राइट से, आगे से, पीछे से, हर जगह से मैं आऊंगा। ये ऐसी जंग है ना जिसमें उसने तो ठान रखी है कि मैंने नहीं इसको छोड़ना, मैंने इसको जहन्नुम तक ले जाके ही छोड़ना। इंसान इतना गाफिल है तो जो समझता ही नहीं है कि ये मेरा दुश्मन मेरे ताक में बैठा हुआ, उसको वो चाहता है, उसका मकसद यह है कि इंसान रब की नजरों से गिर जाए, रब की पहचान गुम कर दे, भूल जाए रब को, ना शुक्रा बन जाए। अल्लाह ताला इसीलिए उस दिन फरमाएगा ना, आदम के बच्चों मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुमने क्यों इसकी बात मानी। एक हदीस में जिसमें ये है कि ईसा अलैहि सलाम जो है ना उनकी तरफ लोग जाएंगे और फिर लोग कहेंगे कयामत के दिन कि आप हमारी सिफारिश करेंगे, तो वो कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने आएंगे और शिफात करेंगे, तो हदीस में आता है कि ऐसी खुशबू उस मजलिस में होगी, इस तरह की खुशबू होगी जैसे पहले कभी ये खुशबू नहीं सूंघी हो किसी ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, शिफात कबूल होगी, तो उस वक्त जब ये काफिर लोग देखेंगे तो वो सोचेंगे अच्छा ईमान वालों को तो एक सिफारशी मिल गया, अपने सिफारिश कराने गए थे, हम भी किसी को सिफारशी ढूंढे, तो अब जाहिर है उनके लिए तो वही है बड़ा और उनका सब, तो वो शैतान की तरफ जाएंगे और वो ये समझेंगे जैसे दुनिया में ये हमारे लिए, हमारे हमें हम इसके पीछे लगे रहते थे, ये हमारे काम करता था, या हमारे लिए फायदेमंद था, या हमें, हमने तो इसको ही हमेशा देखा है बड़ा, तो इस तरह ही यहाँ पे भी ये हमारी कुछ सिफारिश कर लेगा। तो वो आके उसको कहेंगे तू हमारी सिफारिश कर, तो उस मजलिस में इस कदर बदबू फैल जाएगी जो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ये कैफियत देखकर जो उसके पास आने वाले होंगे वो इतना रोएंगे चिल्लाएंगे उस मौके पर, ये फिर वो तकरीर भी करेगा कि मैंने तो खिलाफ वर्जी की है वादे की, अल्लाह के वादे सच्चे थे जो उसने नबियों की जुबानी तुम्हें तुम्हें बताए कि मैं अपने ईमानने वालों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और शिर्क और कुफर की रविश पे चलने का अंजाम क्या ये बताया था उन्होंने, सारे वादे थे और वो सच्चे थे। अल्लाह अकबर। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तुम्हारे पर कोई जोर तो नहीं था, कोई जबरदस्ती तो नहीं थी। अब ये देखिए ना, अब वो कह रहा है, मैंने आपको बताया ना सुल्तान का मतलब गलबा भी है, जोर भी है, دلیل بھی ہے. تو شیطان جو اس دن اس کے جو زور اس جو وہ کہے گا نا کہ میرا زور میرا دباؤ میرا اختیار تمہارے پر نہیں تھا دنیا میں, نہیں میں تم سے کچھ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کچھ کروا رہا تھا نا, میں تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ تمہارے آپ کے سر پہ کسی نے بندوق تو نہیں رکھی بھی کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ خود پھر فیصلہ کرتے ہیں نا. تو وہ کہے گا کہ الا ان دعوتکم, میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا, فاستجب تم لی, تم نے مان لی میری بات. اور اگر سلطان سے مانا دلیل لے تو یعنی میرے پاس کوئی دلیل تھوڑی تھی, کوئی دلیل ہو اس کا مطلب ہے کہ شیطانی راستے کی کوئی دلیل نہیں ہے, وہ خود مانے گا اس دن. اللہ کے راستے کی تو دلیل ہے, ٹوز دلائل ہے, پروف ہے. یہ بے دلیل راستہ ہے شرک اور کفر کا, اللہ کی نافرمانی کے راستے میں کوئی دلیل نہیں ہے, پھر بھی انسان مانتا چلا جاتا ہے. کہتا میں صرف دعوت دی تھی تمہیں, تم نے اپنی مرضی سے میری دعوت قبول کی ہے, تم نہ مانتے, میں نے کون سا تمہیں کوئی پکڑ کے زبردستی کچھ کرا لیا تھا. آپ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی پھنسنے لگے نا تو کہتا ہے لو میں نے کہا تھا تمہیں, نہ کرتی تم. آپ کہے نا اس نے مجھے کہا تھا, اس نے مجھے کروایا. آپ دیکھنا دنیا میں ہی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, وہاں پہ کس کو الزام دو گے, ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں کہہ کے ان سے کہا آپ بڑے تھے جی ہم آپ کی فالوئنگ کرتے تھے, آپ ہمیں بچائیں, یہاں پہ کچھ ہمارا انتظام کریں نکلنے کا. وہ کہیں گے ہمیں کیا, ہم تو خود نہیں ہدایت پہ تھے, ہم تمہیں کیا بتاتے. اب شیطان کو بھی دیکھ لیں, میں نے کیا کیا, خود ہی تم آئے تھے, نہ کرتے تم میری پیروی, مجھے اب کیا کہتے ہو. بلا تلومونی, مجھے نہ ملامت کرو اب, ولومو انفسکم, اپنے آپ کو ہی ملامت کرو, اپنے آپ کو رو, مجھے نہ رو. ماں انا بھی مصرفکم وما انتم بمصرفیہ, نہیں میں تمہارے لیے التجا کرنے والا, نہ تم میرے لیے التجا کرنے والے ہو, نہ تم میرے لیے فریاد رس, یعنی نہ میں تمہارا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں نہ تم میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو, ہم سارے ہی پھنسے پڑے. کیونکہ وہ کہیں گے نا تو نے ہمیں لگایا غلط راستے پہ, تو نہ ہوتا تو ہمارا یہ ہوتا, تو نے ہمیں اس طرح سے اس طرف کو غلط راستے کا جھانسا دیا, تو نے ہمیں سبز باغ دکھائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ہما یعدکم الشیطان الا غرورا, شیطان کے تو جتنے وعدے وہ سارے دھوکے تھے, یہ آج نہیں سمجھ آتی. اسی لیے وہ داروغہ جہنم جب پوچھیں گے نا لم یاتکم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن کاش ہم سن لیتے سمجھ لیتے, ہمیں نہ سنا نہ سمجھا اور یہاں پہ آ کے پڑ گئے. تو آج جو اس کے بڑے پکے وعدے ہیں سب جھوٹ ہیں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تو اس سے انکار ہی کرتا ہوں جو تم شریک ٹھہراتے تھے مجھے اس سے پہلے دنیا میں, یعنی جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں تو اس کا انکار کرتا ہوں, اسے انکار کر دے گا یعنی میں بری ذمہ ہوں اس سے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ بالکل ہی انکار کر دے گا, میں تو اللہ کا کوئی شریک نہیں, میں تو اس کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لهم عذاب الیم, ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ ہو سکتا کہ یہ اسی کی بھی بات ہو کہ وہ ہی اس کی بات یہاں تک کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ظالم وہ ہے نا جو اللہ کے وعدوں کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لے, تو ان کے لیے تو عذاب ہی ہے, یہ وہ خود کہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات یہاں پہ من قبل تک ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ظالم ہے جنہوں نے حق کا راستہ چھوڑ کے شیطان کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. آپ دیکھ لیں یہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ کھول کے بیان فرما رہا ہے ہمارے لیے, سب کچھ کھول کے رکھ دیا, اس کے بعد بھی کوئی بھولا رہے, کوئی بھٹکا رہے, کوئی سمجھے ہی نہ, اما شاکر ہوں اما کفورا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تمہیں تو سب کچھ بتا دیا, اب تم شکر گزار ہو یا نا شکرے بنو, تب تم کفر کرو یا ایمان لے آؤ, تو تمہاری مرضی ہے, اس سے زیادہ واضح کیا باتیں ہو سکتی. آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہوں گے نا, سب باتیں بتا دیتے ہیں, اس کے بعد اینڈ میں یہی کہتے ہیں نا اس کے بعد اور میں کیا بتاؤں, سب کچھ بتا دیا, اب بھی اگر تمہاری مرضی ہے کہ غلط راستے پر چلو تو اپنا ہی نقصان ہے. پھر نہ کہنا پتا نہیں تھا, پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم, اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، ایسی جنت میں، ایسے باغوں میں، جنات میں، جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے اذن سے. اور سورہ زمر میں تو آتا ہے کہ جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کہ جب جنت میں پہنچے ہیں تو اتنا بھی نہ ویٹ کریں کہ دروازہ کھلے، اتنا بھی انتظار نہ کرنا پڑے، دروازے پہلے سے کھول دیے گئے ہوں گے اور ان کو داخل کر دیا جائے گا ایسی جنتوں میں. تحیتہم فیہا سلام، جہاں پہ ان کی گریٹنگ سلام ہی سلام ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو بھی یہی کہہ کے ملاقات کیا کریں گے، سلام کیا کریں گے، ان کی آپس کی گفتگو میں بھی سلام ہوگا، ہیلو ہائی نہیں ہوگی، گڈ مارننگ نہیں ہوگی، اور فرشتے بھی آ کے ان کو سلام کی ہی دعائیں دیں گے. کیونکہ سلام ایک دعا بھی ہے، ایک گریٹنگ بھی ہے، جب کسی کو ملتے ہیں تو تب بھی آپ سلام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، تو ان کا وہاں پہ استقبال جو ہوگا نا، ان کا ویلکم جو ہوگا وہ سلام کے ساتھ ہوگا، سلامتی کی مبارک بادوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سلام آئے گا ان کے لیے. اَلَمْ تَرَ، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا چیز، کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کیسی، کس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ایک مثال. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس لیسن کے اندر آپ کو اعمال کی اور عقیدے کی جو کافروں کا ہے اس کی بھی مثال آپ نے دیکھ لی راکھ کی طرح تھی، اور بھی مثال دی جائے گی. اب یہاں پہ شجرہ کلمت خبیصہ کی مثال آگے آ رہی ہے، اور ابھی کلمہ طیبہ کی مثال ہے. اچھا، مثل اور مثل میں تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پہ مثل ہے نا، مثل کہتے ہیں جب ایک چیز بالکل دوسری چیز کی طرح، اور جیسے ہم کہتے ہیں اس کی سکن دودھ کی طرح سفید ہے، اور مثل میں کیا ہوتا ہے، یہ مثل ہوتی ہے. اور مثل میں کیا ہوتا ہے، مثل میں اس چیز کی جو صفت ہوتی ہے نا وہی دوسری چیز میں اس کی مثال دی جاتی ہے، وہ اس کی صفت کی مثال بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی جا رہی ہے. کلمہ طیبہ کیا، سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ کو سمجھیں. کلمہ طیبہ کی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہر اچھی بات بھی کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ، کیونکہ سب سے اچھی بات تو یہی ہے، اس سے اچھی بات نہیں کوئی ہو سکتی. تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور کلمہ طیبہ اصل میں وہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی عقیدہ ہے نا. تو یہ عقیدہ جو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ایسے ہے جیسے، اچھا آپ اس کو ایسے نہیں سمجھیں کلمہ طیبہ کا شجرت طیبہ، کلمہ طیبہ درخت ہے، پاکیزہ درخت، ایسے نہیں، ایسے سمجھیں جیسے میں آپ کو مثلا کہوں کہ کوئی آپ کو کہے کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک ہجوم ہے، اس کے اندر ایک کونا ہے، اس کے اندر ایک کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری مثال ہجوم کی طرح، ہجوم کی طرح نہیں، وہ اس پوری انالوجی کے اندر، اس پوری مثال کے اندر جو ایک لڑکی ہے اس سے آپ نے مثال دی. اسی طرح یہاں پہ کلمہ طیبہ پاکیزہ بات کی مثال کیسے ہے، اب کلمہ طیبہ کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، ایک درخت اس کی اصل ہوا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی جڑ نیچے تک زمین میں پینیٹریٹ کی ہوئی ہے. وفرعہا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی، اس کی شاخیں اوپر تک گئی ہوئی ہیں، آسمان تک گئی ہوئی. کلمہ طیبہ ایسے ہے، یعنی اس میں کیا ہے کہ ایک درخت کے اندر جڑیں اتنی مضبوط ہے، اتنی نیچے ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے. اور درخت کیا ہے، یہ مومن ہے. اور اس کی حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا تھا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور یہ درخت کون سا ہے، तो कौन सा दरख्त है? इब्ने उमर उसमें बैठे हुए थे उसी मजलिस में, तो वो भी छोटे थे, तो उन्होंने दिल में सोचा कि ये खजूर का दरख्त है। अब सहाबा कुछ और बोलते रहे, उनका ध्यान जो जंगलों में दरख्त होते हैं उनकी तरफ गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो नहीं है, खजूर का दरख्त है। तो उस वक्त उनको ये हुआ, अफसोस हुआ कि काश मैं ये बात बता देता। छोटे थे ना, तो वो रिलक्टेंट रहे कि कहीं पता नहीं इतने बड़े बड़े सहाबा बात कर रहे हैं और मेरी बात, कभी इंसान हो जाता है ना कि मेरी क्या हैसियत में, क्या बताओ, या मेरी बात पता नहीं सही हो या नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया भी, लेकिन मैं ना वो शर्म की वजह से बोल नहीं सका कि मैं कैसे इतनों के सामने बोलूं। तो फरमाया कि ये खजूर का दरख्त है और ये दरख्त मोमिन है, मुसलमान की तरह इसकी मिसाल है। तो इमाम कुर्तुबी ने इसकी ये वजह बयान की है कि जैसे खजूर के दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, इसी तरह मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इस वजह से उसको खजूर के दरख्त के साथ मिसाल दी। और भी बहुत सारी वजूहात है। अल्लाह ताला ने मोमिन को खजूर के दरख्त के साथ मिसाल दी, और उसके अंदर जो कलमा तैयबा है ना, वो है जो जिसकी जड़ें मजबूत, जैसे दरख्त की जड़ें मजबूत होती है ना, इसी तरह कलमा तैयबा उसके दिल के अंदर इतना मजबूत है कि फरहुहा फिस्समा, जो दरख्त है उसकी शाखें ऊपर आसमान तक जा रही है। इसी तरह जो मोमिन का अमल है, अब जाहिर है जब दिल के अंदर इतना मजबूत होगा कलमा तैयबा, अकीदा उसका मजबूत होगा, तो फिर अमल भी क्या जबरदस्त होंगे कि वो भी ऊंचे जाने वाले अमल है, ऊंचे ले जाने वाले उसको अमल है। तो ये एक मिसाल से बताया गया, ये मोमिन का अकीदा, उसका अमल कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, आपके सामने एक थाल पेश किया गया जिसमें ताजा खजूरें थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई और फरमाया ये दरख्त खजूर का है, और ये जो ये शजरा तैयबा है ना, ये खजूर का दरख्त है। तो जब भी आप खजूर के दरख्त को आप देखेंगे ना, अब यहाँ पे इसको शजरा तैयबा कहा गया, और शजरा तैयबा क्या है? मोमिन है। तो अब आपने याद रखना है कि इससे अल्लाह ताला ने मोमिन की मिसाल दी है, और मोमिन के दिल में जैसे इसकी जड़ें मजबूत जमीन के, और इसकी जड़ें ना बहुत डिफरेंट है दूसरे दरख्तों की जड़ों से। दूसरे दरख्तों की जड़ें जैसे आप बाल बाल की तरह होती हैं, इसकी जैसे आपके दांत होते हैं ना, जैसे दांत की जड़, आपने कभी देखी है आपके कभी अल्ट्रासाउंड या एक्सरे हुआ हो, तो कैसे दो जैसे टांगों पे खड़ा हुआ, इस तरह इसकी जड़ें होती हैं। तो ये अकीदा मोमिन का भी दिल के अंदर इतना मजबूत होता है, जड़ मजबूत होती है, और फिर अमल इसका ऊंचा होता है। अब तफसीर कुर्तुबई में यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे एक बड़े मजबूत जड़ वाला दरख्त हो, और आपने फरमाया वो जो दरख्त है उसकी जो रगे है वो ईमान है, उसकी जड़ें नमाज है, उसकी शाखें ज़कात है, उसकी टहनियां रोजे हैं, और अल्लाह के लिए तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना, ये उसके मतलब उसके अमल है, उस अखलाक अच्छा होना, अल्लाह की हराम करता चीजों से बच जाना, ये उसका फल है। तो इसके पत्ते जो है ना, वो उसका अखलाक है, और इसके तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये जो नेकी है वो इसके इसके पौधे हैं, इसकी ग्रीनरी है, जो इसकी नबातात है। तो यानी मोमिन को दरख्त, और खास तौर पे खजूर के दरख्त के साथ, अब देखिए क्या मुमासलत है खजूर के दरख्त के साथ मोमिन की। आप एक बात देखें, खजूर का दरख्त जो है ना इतना अट्रैक्टिव है, सुभान अल्लाह, सब दरख्तों से डिफरेंट, इसकी एक शेप, इसका एक जैसे उस जैसे वो खड़ा होता है, उसके अंदर जो डिग्निटी है वो सबसे अलग है, इतने भी आप दरख्त देते हैं, इसीलिए लोग अपने घरों में खास तौर पे इसको ब्यूटी के लिए भी लगाते हैं। तो ये एवरग्रीन दरख्त है, सदाबहार, हर तरह के हालात में खड़ा रहता है, इसके पत्ते झड़ते नहीं है। मोमिन भी ऐसा होता है, हर तरह के हालात में वो खड़ा रहता है। ऐसे नहीं है कि हालात कभी तंग है, कभी तुरश है, कभी खुशी है, कभी गमी है, आज उसका कुछ किरदार, कल उसका कुछ किरदार, जैसे हालात वैसे अपना रंग बदल लिया। ये तो गिरगिट करता है, जैसी जिधर जाता है ना वो उस तरह से ही बन जाता है। हम वेस्ट में आए, हम वेस्ट वाले बन गए, ईस्ट में गए, इसमें वह सऊदी अरब गए तो वहां के मुताबिक बन गए, जिधर जाएंगे वहां के रंग ढंग डाल देंगे। नहीं, और इसके ऊपर मौसम के असरात ऐसे नहीं होते कि मौसम असर करे कि उसके पत्ते ही झड़ जाए, दूसरों के तो पत्ते झड़ जाते हैं, नहीं, इसके हमेशा पत्ते रहते हैं। यानी क्या मतलब, हमेशा इताअत में लगा रहता है, सख्ती के हालातों, गर्मी के हालातों में इताअत गुजार ही रहता है, उसके पत्ते हमेशा रहते हैं, सदाबहार रहेगा, उसको ये चीजें इफेक्ट नहीं करती कि सख्त हालात आ गए तो फिर मेरे अब रवैये बदल जाए, मुश्किल हालात आ गए तो कड़वे कसीले हो जाए, आज मूड कुछ है तो कुछ तरह से बात करें, कल मूड कुछ और हो गया और ऑफ हो गया तो लोगों के साथ बद अखलाक हो गए, किसी दिन मूड अच्छा हो गया तो लोगों के साथ खुश अखलाक हो गए, हालात अच्छे हैं तो बड़े खुश हैं, हालात नागवार हो गए तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह की फरमाबरदारी को दूसरे ही रास्ते पे चल पड़े। नहीं, वो एवरग्रीन है, मोमिन भी एवरग्रीन है। फिर आप देखिए खजूर का तना कैसे बुलंद होता है, लेकिन उसके पत्ते सुभान अल्लाह उसकी शाखें नीचे को झुकी होती है। मोमिन भी कितना ही बुलंद हो जाए, कितना ही नेक हो जाए, उसके अंदर आजजी रहती है, आजजी। और जितने और दरख्त हैं आप देखें, इनके फल कभी किसी का मीठा, किसी का फीका, किसी का कुछ, डिफरेंट तरह के होते हैं ना, लेकिन इसका फल हमेशा ही मीठा होता है। कभी आपने देखा ये किसी को कहते हुए, ये खजूर बड़ी फीकी है? हमेशा ही मीठी होगी, वो हमेशा मीठा ही रहता है, उसका फल हमेशा मीठा, तो इसका फल किस कदर लोगों को फायदा पहुंचाने वाला। तूती उकुलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा, वो देता है फल हर आन अपने रब के इज़्ज़त से, हर वक्त फल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त ही उसके ऊपर फल लगे रहते हैं, ये नहीं, मगर हर साल वो फल लेकर आता है, हमेशा उसका फल होता है और उसका फल हमेशा ही फायदा दे रहा होता है। यानी इसका अमल फायदा पहुंचाने वाला है, इंसानियत को फायदा देता है, अपने इर्द गिर्द वालों को फायदा देता है, हर तरफ चारों तरफ इसका फल लगा होता है। तो वो कुल्लाहीन से मुराद है हर साल फल दे रहा है, यानी कि 24 घंटे फल फल लगा। मगर कुर्तुबी ने कहा कि इससे मुराद है कि सुबह शाम फल देता है, हालांकि सुबह शाम तो नहीं फल देता, मगर मतलब इसका यही है कि खजूर का जो फल है वो किसी वक्त भी खाया जा सकता है, ये भी इसका मतलब है कुल्लाहीन का, किसी वक्त भी खाया जा सकता है, चाहे आप सुबह को खाएं, शाम को खाएं। आप देखें निहार मुंह भी लोग खाते हैं खजूर, रात को भी खाते हैं, भिगो के भी खाते हैं, और सूख जाए तो तब भी उसके छुहारे भी खाते हैं, इसकी गुठली भी काम आती है, इसका तना भी काम आता है, इसके पत्ते भी काम आते हैं, इस सारा का सारा ही काम का, सारा का सारा ही फायदे का, कहीं नुकसान है ही नहीं इसका। इसी तरह मोमिन भी है, उसकी नेकियां कई तरह की हैं, कई तरह की उसकी नेकियां, हर तरफ फायदे ही पहुंचा रहा है। और फिर देखिए आप कि इवन ये कि ये सूख भी जाए, काट के भी इसके जो तने के और इसके पत्तों के फायदे उठाए जाते हैं, खजूर इसकी सूख भी जाए तो तब भी उसका फायदा है, इसी तरह मोमिन दुनिया से चला भी जाए तो तब भी उसकी नेकी चलती जाती है, जो सदका जारिया के काम है वो उसके चलते ही चले जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसके कलिमा तय्यबा ने जड़ पकड़ लिया इसके अंदर और शाखें इसके ऊपर तक, इसका अमल ऊपर तक बुलंद होता है, क्योंकि जब जड़ मजबूत होती है ना किसी चीज की, तभी उसको वो पायदार होता है, तभी उससे आगे उसकी शाखें बुलंद हो सकती हैं। अगर जड़ ही फ्लिमजी हो तो वो तो गिरा पड़ा होगा, जिसकी आगे मिसाल आ रही है। और ये जमीन से भी अपनी गजाइत ले रहा है, और ऊपर को देखें तो आसमानों तक जा रही का मतलब नहीं कि आसमानों को टच कर रही, मतलब ऊपर आप देखते हैं तो आसमान ही नजर आता है, इतनी बुलंद होती है इसकी शाखें। तो मोमिन भी जमीन से भी फायदा लेता है और आसमानी रिस्क जो वही है वहां से भी फायदा रहता है। और ये देखें तूफानों में भी खड़ा रहता है, बाकी दरख्त गिर भी जाते हैं, ये खड़ा रहता है, मजबूत है ना इसकी जड़। तो जिनके दिल के अंदर कलमा तैयबा मजबूत नहीं है, वो तूफानों में गिर जाते हैं। आपने देखा है, जरा सा भी कुछ आंधी तूफान आए जिंदगी के अंदर, जिंदगी के अंदर हालात अपसे डाउन आए, वो तो सब चीज छोड़ छाड़ के ईमान से भी भाग जाते हैं, क्योंकि असल जो थी वो जड़ जो थी वो मजबूत नहीं थी। लेकिन जो मोमिन होता है वो ये खजूर के दरख्त की तरह होता है, जड़ भी मजबूत है, अकीदा मजबूत है, अकीदा सही है। और अकीदे के अलावा इसकी और भी इंटरप्रिटेशन की गई है कि मतलब अच्छी बात उसके दिल के अंदर होती है, इसी तरह तस्बीहात को इससे कलमा तैयबा से मुराद तस्बीहात भी लेगी, मगर असल बात ये जो अकीदा है, ठीक है। तो जब अकीदा मजबूत होगा तो फिर देख लें कि फिर फलावर भी फलदार भी होंगे, फिर आखे भी अमल भी ऊपर को जाएगा, फिर फल भी हमेशा सुबह शाम देंगे। अल्लाह ताला तो बयान करता है मिसालें लोगों के लिए, लालम या तदक्करुन, ताकि वो नसीहत पकड़े इनसे, इन मिसालों से। और अब ऑपोजिट मिसाल है, मतलब कलिमतिन खबीसतिन, और खबीस कलमे की मिसाल यानी नापाक बात, कुफरिया बात, शिरकिया बात या मुनाफकत वाली बात, वो उनकी मिसाल, उसकी मिसाल ऐसे समझें, मतलब ये नहीं कि मिसाल शजर से, शजर नहीं, ऐसे समझें कि शजरतिन खबीसतिन, जैसे कि एक अगर एक दरख्त है, ऐसा दरख्त इस दुसत मिन फौकल अर्थ, उखाड़ा गया है जमीन के ऊपर से, माला मिन करार, यानी उसको कोई करार ही नहीं, कोई सबात नहीं, वो मजबूत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि उसकी जड़ें ही अंदर तक नहीं, ऊपर ऊपर है, फौकल अर्थ है, जमीन के ऊपर ऊपर है। जैसे आप वीड्स देखते हैं ना, वीड्स होते हैं, आप उनको ऐसे पकड़ेंगे तो उसी वक्त ही वो हाथ में आ जाते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं। ये कलमा खबीसा भी ऐसा है, और इसकी इस ऐसा दरख्त कौन सा है जिसको बताया गया कि हंजल का दरख्त है, ये सहराई जमीन में होता है, इसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही होती हैं, और जरा सा हवा चली तो उखड़ के गिरा पड़ा होता है, और इतना सख्त कड़वा इसका फल होता है कि उसकी कड़वाहट की मिसाल दी जाती है। इसको उर्दू में अंदराइन भी कहते हैं, तुम्मा भी कहते हैं। तो जो बदअकीदा लोग हैं ना, जो शिर्क और कुफर का अकीदा रखते हैं, उनके अमाल की कोई हैसियत नहीं, जब जड़ ही नहीं है तो अमाल किधर ठहरेंगे। इसी ने कहा ना, माला हमें करार, उसके अमल के भी कोई करार नहीं, कितने नेक अमल भी कर लें, जैसे अभी राख का बताया गया, इसी तरह ऐसे पौधे की तरह बगैर जड़ के, बगैर जड़ के भी कोई पौधा हो सकता है, कोई दरख्त हो सकता है, ये ऐसे ही है, कभी इधर को लुढ़कते हैं, कभी इधर को लुढ़कते हैं, जरा सा हाथ ही लगाओ तो वो हाथ में आ जाते हैं। तो जो नेक अमल भी काफिर करता है, उसका दुनिया में हो सकता है कुछ फायदा हो जाता है, यानी वो कुछ देर के लिए जो खड़ा हुआ है ना जमीन के ऊपर, जब अभी आंधी तूफान नहीं आए, ऐसे खड़ा हुआ है ऊपर ऊपर, तो बस वो ही उतना ही फायदा है, मगर ना मरने के बाद कोई फायदा, ना हशर में कोई फायदा, क्योंकि वो बेसलेस है, जड़ के बगैर है। जड़ तो कलमा तैयबा है ना, वो मजबूत होनी चाहिए, वो अकीदा है, समझ आ रही है बात? पता नहीं आप लोगों को ये मिसाल समझ आई है, मैं सही से समझा सकी या नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने आपके आगे अर्ज किया कि मालदार लोगों के तो दर्जात बहुत बढ़ गए हैं, तो आपने फरमाया, याद रखो अगर तमाम दुनिया की चीजें लेकर अंबार लगा दो तो भी वो आसमान तक नहीं पहुंच सकता। मतलब आप तो पूरी दुनिया की चीजें जमा कर लें, देखें आसमान तक तो नहीं जा सकती ना। मैं तुम्हें तो ऐसा अमल ना बताऊं जिसकी जड़ मजबूत है और उसकी शाखें आसमान में। उसने पूछा वो क्या है, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर फर्ज नमाज के बाद 10 दफा कह लिया करो, इसकी असल मजबूत है और इसकी फरा आसमान में है, इसकी शाखें आसमान तक जा रही हैं, यानी ये बंदे के दिल के अंदर होता है ना, ये मजबूत जड़ वाली कलिमात है, इनकी आसमान तक शाखें, यानी आसमान तक ये चढ़ता है।